السلام علیکم، یہ پارٹ سکس ہے ناول ڈارک فیس۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز کمل خلیل، پیشکش محمد اظہر، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ سکس۔ اس وقت بھی وہ کمپنی کے آفس میں بیٹھا ایک بزنس فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ کے دوست جیفری کی کال ہے سر، دوسری طرف سے اس کی لیڈی سیکرٹری نے کہا۔ تو نارمن بیکتیا چونک پڑا۔ او اچھا، کراؤ بات، نارمن نے کہا، کیونکہ جیفری اس کا ایسا دوست تھا جسے اس کے بارے میں تمام تفصیلات کا علم تھا۔ جیفری خود بھی ڈیٹ لینڈ کی ایک سرکاری ایجنسی کا چیف رہا تھا اور پھر ریٹائر ہو کر اس نے ایک کلب بنا لیا تھا، اور ابھی تک اس کلب کو چلانے کے ساتھ ساتھ وہ مخبری کا ایک نیٹ ورک بھی چلاتا تھا۔ کافی عرصے بعد اس کا فون آیا تھا۔ ہیلو، نارمن بول رہا ہوں، نارمن نے ریسیور اٹھائے ہوئے کہا۔ جیفری بول رہا ہوں نارمن۔ چند لمحہ بعد جیفری کی مخصوص آواز سنائی دی۔ بہت دنوں بعد فون کر رہے ہو، کیا کہیں گئے ہوئے تھے؟ نارمن نے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، میں نے کہاں جانا ہے، بس فرصت ہی نہیں ملی، اور اب بھی میں نے ہی فون کیا ہے، تم نے تو نہیں کیا، جیفری نے بھی بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ یہ فرصت ہی تو اس دور میں انکا ہو چکی ہے، نارمن نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ فون محفوظ ہے؟ دوسری طرف سے جیفری نے کہا۔ تو نارمن چونک پڑا، اس نے ہاتھ بڑھا کر فون پیس کے نچلے حصے میں موجود ایک سفید رنگ کا بٹن پریس کر دیا۔ ہاں محفوظ ہے، کیوں؟ نارمن نے کہا۔ کیا پاکیشیا سے گریس لینڈ لائی گئی؟ کسی سائنسی دھات کا کیپسول تمہارے قبضے میں ہے؟ جیفری نے کہا۔ تو نارمن اس بار واقعی کرسی سے اچھل پڑا۔ لیکن تمہیں کس نے بتایا ہے؟ نارمن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر نارمن، اپنے آپ کو اور اپنی تنظیم کو بچا لو، اور وہ سائنسی دھات پاکیشیا کو واپس کر دو، جیفری نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جیفری؟ میں نے اس دھات کو انتہائی بھاری قیمت پر فروخت کرنا ہے، حکومت رامانیہ سے بات چیت ہو رہی ہے اور چند دوسری حکومتوں سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، اور تم یقین کرو کہ یہ دھات اربوں ڈالرز میں آسانی سے فروخت ہو جائے گی، اور پھر میں نے اسے پاکیشیا سے نہیں چرایا۔ مجھے تو اطلاع ملی تھی کہ گرین لینڈ کی تنظیم گرین لائٹ نے پاکیشیا سے انتہائی قیمتی دھات کا ایک کیپسول چوری کیا ہے، تو میں نے اسے اڑا لیا۔ نارمن جب بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس اس دھات کی واپسی کے لیے گرین لینڈ پہنچ چکی ہے اور انہیں ساری تفصیل معلوم ہے، جیفری نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جیفری، جب میرے آدمیوں کو میرے بارے میں علم ہی نہیں ہے اور تم خود جانتے ہو، پھر ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ نارمن نے قدرے غصے لہجے میں کہا۔ ان کا اہم آدمی جس کا نام علی عمران ہے، میرے پاس ایک سوئس نژاد لڑکی کے ساتھ آیا تھا اور اسے ساری تفصیل معلوم ہے، اور وہ اب ڈارک فیس کا سراغ لگاتا پھر رہا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ میں یقیناً تمہارے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہوں، لیکن میں نے اسے بتایا ہے کہ ڈارک فیس کا صرف نام سامنے آتا ہے، آج تک کوئی اہم آدمی سامنے نہیں آیا، جس پر وہ واپس چلا گیا، اور میں نے تمہیں اس لیے فون کیا ہے نارمن کہ یہ آدمی دنیا کا خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو بات اس سے جتنی چھپائی جائے یہ اتنی جلدی اس سے واقف ہو جاتا ہے۔ خوش قسمتی بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور وہ جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے۔ اس میں ویسے بھی बेपना खसूसियात है। जेफरे ने कहा, तुम इससे खासे मरूब लगते हो जेफरे, मुझे भी इसके बारे में काफी मालूमात हासिल है और मुझे पहले ही इस बात की इत्तला मिल गई थी कि इमरान अपने ग्रुप के साथ धात हासिल करने यहाँ पहुँच रहा है, इसलिए मैंने ये धात ऐसी जगह पहुँचा दी है कि जहाँ इमरान का तसव्वुर भी नहीं पहुँच सकता। नारमन ने कहा, इस ख्याल में ना रहना नारमन, बहैसियत एक दोस्त में तुम्हें कह रहा हूँ कि ये इमरान बहुत तेज और शातिर आदमी है। जेफरे ने कहा, और मैं भी दोस्ती की वजह से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, मुझे मालूम है कि वो किसी भी आदमी या औरत की आवाज की हूबहू नकल उतार लेता है, मैंने इसका पेशगी बंदोबस्त कर दिया है। तुम मुझे ये बताओ कि इसका और इसके साथी लड़की का हुलिया क्या था और इसकी रहाइश कहाँ है। नारमन ने कहा, रिहाइश के बारे में तो मैं नहीं जानता और अगर पूछ लेता तो जाहिर है वो ना बताता, अलबत्ता दोनों के हुलिये बता देता हूँ। जेफरे ने कहा, और इसके साथ ही इसने हुलिये तफसील से बता दिए। ये तुम्हारे क्लब कार में आए थे या किसी टैक्सी पर? नारमन ने पूछा तो दूसरी तरफ से जेफरे बेख्तियार हंस पड़ा। तुम वाकई एक अच्छे सेक्रेट एजेंट हो, मैंने भी इस बारे में मालूमात हासिल की थी। ये दोनों एक कार में आए थे और इस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर और मॉडल के बारे में भी पार्किंग बॉय से मालूमात मिल गई थी, जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जेफरे ने कहा और इसके साथ ही इसने कार के बारे में तफसीलात बता दी। थैंक यू जेफरे, तुमने वाकई दोस्ती का हक अदा कर दिया है, अब मैं खुद ही इनसे निमट लूंगा। नारमन ने कहा, बहुत ज्यादा मोहतात रहना, ओके गुड बाय। जेफरे ने कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो नारमन ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रखा, वो कुछ देर बैठा सोचता रहा, फिर उसने मेज की दराज खोली और इसमें से कार्ड लेस फोन पीस निकाल कर इस नेस का बटन प्रेस कर दिया। यस जिगर बोल रहा हूँ, रब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लॉर्ड बोल रहा हूँ, नारमन ने बदले हुए लहजे में कहा। यस लॉर्ड, हुकुम लॉर्ड, दूसरी तरफ से इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा गया। एक मर्द और एक औरत के हुलिये नोट करो, नारमन ने कहा और फिर उसने जेफरे के बताए हुए हुलियों की तफसील दोहरा दी। यस लॉर्ड, जेगर ने जवाब देते हुए कहा। अब एक कार के बारे में तफसील नोट करो, नारमन ने कहा और इसके साथ ही इसने कार की तफसील भी बता दी। यस लॉर्ड, जिगर ने कहा, इस कार को तलाश कराओ, इस कार में जो मर्द था जिसका हुलिया मैंने बताया है वो पाकिशिया का इमरान नामी आदमी है, ये इंतहाई खतरनाक सेक्रेट एजेंट समझा जाता है, इसके साथ औरत यकीनन इसकी दोस्त होगी, असल अहमियत इस इमरान की है और ये इमरान पाकिशिया सेक्रेट सर्विस का ग्रुप लीडर है, इसलिए लाजमन इसके साथ सेक्रेट सर्विस का ग्रुप भी आया होगा। तुम इनको ट्रेस करके इनकी मशीनें निगरानी कराओ और जब ये ग्रुप कहीं इकट्ठा हो तो इनका फौरी और यकीनी खात्मा कर दो, लॉर्ड ने कहा। मैं इस इमरान को जाती तौर पर जानता हूँ लॉर्ड, मैं जिस एजेंसी में रहा हूँ इसका कई बार इससे टकराव हो चुका है, आप बेफिक्र रहें, मैं इसे आसानी से ट्रेस कर लूंगा और इस इमरान समेत इसके पूरे ग्रुप को भी, जिगर ने जवाब दिया। सुनो, तुमने ये तुम्हारे किसी आदमी ने खुद सामने नहीं आना, इसलिए मैंने मशीनी निगरानी की बात की है, एक्शन तुमने खुद नहीं लेना, किसी और से कराना है जिसका कोई ताल्लुक डार्क फेस से ना हो, लॉर्ड ने कहा। यस लॉर्ड, ये काम किंग क्लब का माइटी आसानी से कर लेगा, मैं इसके जिम्मे लगा देता हूँ, जिगर ने कहा। जो मर्जी आए करो, लेकिन काम फौरन और यकीनी होना चाहिए, बिल्कुल बेदाग अंदाज में, वरना तुम जानते हो कि तुम समेत तुम्हारा ग्रुप जमीन में जिंदा दफन कर दिया जाएगा। लॉर्ड ने गुर्राते हुए लहजे में कहा, आप बेफिक्र रहें लॉर्ड, जिगर अपनी ड्यूटी को समझता है। दूसरी तरफ से कहा गया तो नादमन ने कार्डलेस फोन ऑफ करके इसे वापस मेज की दराज में रख दिया। अब इसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासरात नुमाया थे। किंग क्लब खासे वसी एरिया में फैला हुआ था। इसकी इमारत दो मंजिला थी। क्लब में रौनक भी बेहद थी, लेकिन क्लब में आने जाने वाले लोग सब के सब जराइम पेशा अफराद ही लग रहे थे। इन सबके चेहरे और अंदाज बता रहे थे कि वो जेरे जमीन दुनिया के लोग हैं। तनवीर, सफदर और कैप्टन शकील तीनों कार में सवार यहाँ पहुँचे और उन्होंने कार पार्किंग में रोक दी। अब तुम्हारा प्रोग्राम क्या है तनवीर, सफदर ने कार से उतरते हुए कहा। वही जो मैंने रास्ते में बताया था, माइटी से पूछगछ, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन माइटी तक पहुंचने के लिए भी न जाने कितने मराहल तय करने पड़े, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो, बल्कि मेरा ख्याल है कि तुम दोनों हॉल में बैठकर एंजॉय करो, मैं इसे खुद ही निमट लूंगा, तनवीर ने कहा तो सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। हम वहाँ बैठकर शराब तो पी नहीं सकते और शराब और मंशियात के अलावा यहाँ और कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए हम फौरी मार्क हो जाएंगे। अलबत्ता एक काम हो सकता है कि तुम मायती तक पहुँचने के तक खामोशी खामोश रहो। जब हम मायती तक पहुँच जाएंगे तो फिर तुम आगे बढ़ना, सफदर ने कहा। छोड़ो सफदर इस चक्करबाजी को, ये लोग इस तरह दांव में नहीं आ सकते कि तुम किसी सिंडिकेट का नाम लो या ग्राहक बनकर मायती से मिलने की कोशिश करो। यह ग्रेटलैंड का सबसे खतरनाक क्लब है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं सुनता। ये यहाँ तो ताकत का लोहा माना जाता है और बस, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। वो तीनों पार्किंग से निकलकर क्लब के मेन गेट की तरफ बड़े चले जा रहे थे। सफदर, तनवीर ठीक कह रहा है, ऐसे लोगों का इलाज सिर्फ ताकत ही होती है, कैप्टन शकील ने पहली बार बोलते हुए कहा तो तनवीर के चेहरे पर चमक आ गई। ओके ठीक है, हम मुदाखलत नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारा साथ देंगे, सफदर ने कहा। शुक्रिया, तुम देखना क्या होता है वहाँ, तनवीर ने कहा और फिर इसके साथ ही इसने जेब में हाथ डालकर जेब में मौजूद मशीन पिस्तल को चेक किया। असला वो कोठी से ही अपने साथ ले आए थे। इन दोनों की जेबों में भी मशीन पिस्तल जिनमें फुल मैगजीन थे मौजूद थे। क्लब का मेन दरवाजा शीशे का था लेकिन वो मुस्तकिल खुला हुआ था और वहाँ कोई दरबान वगैरह ना था। अंदर एक वसी और अरीज हॉल था जो औरतों और मर्दों से भरा हुआ था। हर तरफ कह के ऊंची ऊंची बातें करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मंशियात का धुआं हर तरफ चकराता फिर रहा था और शराब की तेज बू से जैसे पूरा हॉल भरा हुआ था। एक तरफ कोने में वसी और अरीज काउंटर था, लेकिन तनवीर उसके साथी ये देखकर हैरान रह गए के पूरे काउंटर पर एक भी मर्द ना था। 8 के करीब लड़कियां वहां काम कर रही थीं, जिनमें से 7 सर्विस दे रही थीं, जबकि एक लड़की फोन सामने रखे स्टूल पर बैठी हुई थी। वेटर्स की बजाय वेटर्स थी और कहीं भी कोई मुसल्ला आदमी नजर ना आ रहा था। अरे ये तो बड़ा महजब क्लब है, यहाँ तो कोई मुसल्ला आदमी भी नजर नहीं आ रहा, बल्कि सिरे से इंतजामिया का कोई आदमी नहीं, हर तरफ औरतें ही औरतें हैं। सफदर ने अंदर दाखिल होकर इधर उधर देखते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। इस बात पर तो इसका नाम किंग के बजाय क्वीन क्लब होना चाहिए, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा और सफदर भी सर हिलाता हुआ हंस पड़ा, जबकि तनवीर के चेहरे पर हल्की सी भूख खिलाहट तारी थी। शायद इसका ख्याल था कि वो काउंटर पर मौजूद मत का गला पकड़कर इससे मायती के बारे में पूछ लेगा। लेकिन यहाँ तो हर तरफ औरतों का राज था। चलने बाद वो काउंटर पर पहुंच गए। यस सर, फरमाइए। स्टूल पर बैठी हुई लड़की ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा, क्योंकि काउंटर के सामने तनवीर ही था, जबकि सफदर और कैप्टन शकील इसके हकब में थे। असिस्टेंट मैनेजर मायती से मिलना है, कहाँ बैठता है वो? तनवीर का लहजा इस कदर कफ था कि वो लड़की चौंक कर उठ खड़ी हुई। इस तरह वो स्टूल से नीचे उतर आई थी। वो इस तरह गौर से तनवीर को देख रही थी जैसे तनवीर ने कोई अनहोनी बात कर दी हो। मुझे क्या देख रही हो? जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, तनवीर ने गुर्रात अमेज लहजे में कहा। तुम्हें मालूम है कि तुम कहाँ मौजूद हो? लड़की का लहजा यक लख कख्त हो गया। हाँ, किंग क्लब में। क्यों? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। यहाँ ऐसे लहजे में बात करने वाला दूसरे सांस नहीं ले लिया करते, समझे? जाओ और जिंदा बच जाने पर खुशियाँ मनाओ। बस मायती किसी से नहीं मिलता, इस लड़की ने पहले से ज्यादा कख लहजे में कहा। तुम्हारी ये जरूरत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करो? तनवीर हत्ते से ही उखड़ गया और दूसरे लम्हे इसका हाथ बिजली की सी तेजी से बढ़ा और लड़की उछल कर काउंटर के ऊपर से होती हुई इसके सामने आ खड़ी हुई। तनवीर ने इसे गर्दन से पकड़कर एक झटके से उठाकर अपने सामने खड़ा कर दिया था। सर्विस देने वाली दूसरी लड़कियां यक लख साख्त हो गई थी। अब बोलो, कहाँ है मायती? बोलो वरना, तनवीर ने गुर्राते हुए कहा। तो दूसरे लम्हे वो लड़की यक लख उछल कर दो कदम पीछे हटी। अब इसका चेहरा किसी बिल्ली जैसा हो रहा था और इसके साथ ही इसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया ही था कि तड़तड़ाहट की तेज आवाजों के साथ ही ऊपर बंद गैलरी में से गोलियों की बौछार निकली। तो तनवीर, कैप्टन शकील और सफदर तीनों चीखते हुए उछलकर पुश्त के बल फर्श पर गिरे। गोलियां बंद गैलरी से बराहे रास्त इन पर ही बरसाई गई थी और चूंकि इनके जहनों में इस बात का तसव्वुर तक ना था, इसलिए गोलियां सीधी इनकी तरफ आईं और वो तीनों गोलियां खाकर पुश्त के बल नीचे गिरे ही थे कि वो तीनों बिजली की सी तेजी से साइडों पर रोल हो गए और इसके साथ ही एक बार फिर तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई दी और बन गैलरी के पीछे से इंसानी चीख की आवाज सुनाई दी। तनवीर का एक बाजू जख्मी हो चुका था जबकि कैप्टन शकील और सफदर दोनों इसके पीछे मौजूद थे, इसलिए गोलियां इनकी पिंडलियों में लगी थी। लेकिन गोलियां बराहे रास्त नहीं लगी थी बल्कि इनका गोश्त काटती हुई निकल गई थी। जवाबी गोलियां तनवीर की तरफ से बरसाई गई थी और बन गैलरी में मौजूद सुराखों को निशाना बनाया गया था। इसके साथ ही वो तीनों यकलख्त उछल कर खड़े हो गए। तनवीर के बाजू से खून बह रहा था जबकि सफदर और कैप्टन शकील दोनों की पिंडलियों से खून बह रहा था। लेकिन अब वो तीनों संभल गए थे और उठते ही तीनों ने यक लख छलांगे लगाई थी और पलक झपकने में वो तीनों करीब ही मौजूद मुख्तलिफ सतूनों की ओट में हो गए और इस बार भी सिर्फ एक लम्हे का वक्फा पड़ा वरना इस बार गोलियां इनके दिलों में घुस जाती। ये गोलियां सामने की बंद गैलरी की साइड से चलाई गई थी। अब इन्होंने देखा था कि बन गैलरी में बड़े बड़े सुराखों की एक पूरी कतार मौजूद थी और यही सूरत इनके अकब में मौजूद बन गैलरी की थी। लेकिन चूंकि वो इसके ऐन नीचे थी इसलिए इस तरफ से इन पर गोलियां ना बरसाई जा सकती थी। अब इन्हें यहाँ की सिक्योरिटी का निजाम समझ में आ गया था और गोलियां बरसते ही हॉल में मौजूद सब अफराद बिजली की सी तेजी से कुर्सियां छोड़कर मेजों के नीचे चले गए, जबकि वो लड़की जिसे तनवीर ने काउंटर से उठाकर बाहर ला खड़ा किया था दौड़कर एक सुतून की ओट में हो गई थी और काउंटर पर मौजूद तमाम लड़कियां काउंटर के अंदर ही नीचे बैठ गई थी। इसी लम्हे एक बार फिर तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई दी। ये फायरिंग सफदर ने की थी और इस बार बन गैलरी के पीछे से इंसानी चीख सुनाई दी। खबरदार, अब अगर गोलियां बरसाई गई तो पूरे क्लब को बमों से उड़ा दिया जाएगा, तनवीर ने यकलक चीख कर कहा। मैं मैनेजर माइटी बोल रहा हूँ, तुम कौन हो? अचानक एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। हम मेहमान हैं और तुमसे मिलने आए थे, लेकिन अचानक हम पर फायरिंग खोल दी गई, तनवीर ने ऊंची आवाज में कहा। फायरिंग बंद कर दी जाएगी और मेहमानों को मेरे ऑफिस में पहुंचाया जाए, वही चीखती हुई आवाज सुनाई दी। और इसके साथ ही मेजों के नीचे घुसे हुए लोग तेजी से बाहर निकलने लग गए। अलबत्ता इनके सबके चेहरों पर शदीद हैरत के तासरात नुमाया थे। बाहर आ जाओ, अब तुम पर कोई हमला नहीं होगा, इस लड़की ने सुतून के अकब से बाहर आते हुए कहा, जिसके हाथ ऊपर उठाने पर तनवीर और उसके साथियों पर फायरिंग की गई थी और तनवीर, कैप्टन शकीन और सफदर भी सुतूनों के ओट से बाहर आ गए। आओ, मैं तुम्हें बॉस के ऑफिस छोड़ा, लड़की ने इस बार बड़े दोस्ताना लहजे में कहा। यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स है या नहीं? तनवीर ने गुर्राते हुए कहा। हाँ ठीक है, पहले तुम्हें फर्स्ट एड मिलनी चाहिए, आओ मेरे साथ, इस लड़की ने कहा और तेजी से एक साइड पर मौजूद राहदारी की तरफ बढ़ गई। हॉल में इस तरह खामोशी थी जैसे वो किसी भरे पूरे हॉल की बजाय किसी कब्रिस्तान में पहुंच गए हों। राहदारी के आखिर में एक दरवाजे पर वो लड़की रुक गई। इसने दरवाजे को दबाकर खोल दिया। आइए अंदर आ जाइए, लड़की ने बड़े मेहरबाना लहजे में कहा और फिर वो कमरे में दाखिल हो गई। तनवीर सफदर और कैप्टन शकील अंदर दाखिल हुए। ये खासा बड़ा कमरा था जहाँ एक आदमी एक अलमारी के सामने रखी हुई मेज के पीछे बैठा हुआ था। ये आपको फर्स्ट एड देगा, लड़की ने तनवीर और उसके साथियों से कहा और फिर वो इस आदमी की तरफ मुड़ गई, जो अब उठकर खड़ा हो गया था। जल्दी करो सेरोस, इन्होंने बॉस मायती के ऑफिस में भी जाना है, लड़की ने कहा। यस, अभी लो, इस आदमी ने कहा और मुड़कर अलमारी खोली। इसमें से एक बड़ा सा मेडिकल बॉक्स निकालकर मेज पर रखा, जबकि तनवीर सफदर और कैप्टन शकील और वो लड़की एक तरफ रखे हुए सोफों पर बैठ चुके थे। लड़की हॉट पीछे तनवीर और इसके साथियों को इस अंदाज में देख रही थी जैसे वो इनके चेहरों से इनकी असल क्वाइफ जान लेना चाहती हो, जबकि सेरोज ने बड़े माहिराना अंदाज में तनवीर के बाजू पर दवा लगाई और पट्टी बांध दी। फिर यही कार्रवाई इसने सफदर और कैप्टन शकील के साथ दोहराई और पीछे हटकर खड़ा हो गया। आओ अब, लेकिन ये सुन लो कि बॉस मायती के कमरे में असला काम नहीं आता और बॉस मायती ऊंची आवाज में बात को भी पसंद नहीं करते, इसलिए अगर जिंदा वापस आना चाहते हो तो इन दोनों बातों का ख्याल रखना, लड़की ने कहा। हमें समझाने के बजाय अपने बॉस को समझा देना कि वो अगर जिंदा रहना चाहता है तो हमारे खिलाफ गलत बात सोचे भी नहीं, तनवीर ने गुस्से लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो लड़की के भीचे हुए होंठ मजीद भींच गए। इस कमरे से बाहर आकर वो इस लड़की के पीछे चलते हुए राहदारी के आखिर में पहुंच गए जहां दीवार थी। लड़की ने दीवार पर 3 बार मखसूस अंदाज में दस्तक दी तो दीवार सरर की आवाज से दरमियान से फट गई। अब वहां एक गंजे सर और बड़ी मूंछों वाला एक आदमी नजर आ रहा था जिसके कांधों से मशीन गन लटकी हुई थी। ओ तुम, इस आदमी ने लड़की को देखकर चौंकते हुए कहा। इन्हें बस मायती अपने पास कॉल किया है, लड़की ने कहा। ओ अच्छा, आओ, इस आदमी ने कहा और वापस मुड़ गया। जाओ, मैं अब वापस जाऊंगी, लड़की ने कहा और इसके साथ ही वो राहदारी में आगे बढ़ती चली गई। तनवीर सफदर और कैप्टन शकील तीनों इस मूछों वाले के पीछे चलते हुए आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि वो एक छोटे से कमरे में थे जिसमें सीढ़ियां नीचे एक बड़े हॉल में जाकर खत्म हो रही थी। वहाँ जुए की मेजें मौजूद थी और वहाँ जुआ खेलने वाले सब ऊंचे तबके के लोग दिखाई दे रहे थे जिनमें मर्द भी थे और औरतें भी। वहाँ मशीन गनों से मुसल्ला अफराद काफी तादाद में मौजूद थे। इस आदमी की रहनुमाई में वो तीनों इस हॉल में पहुंचे और फिर एक साइड पर मौजूद राहदारी की तरफ बढ़ गए जिसके इख्तिताम पर एक दरवाजा था जो बंद था। दरवाजे की साइड में दीवार के साथ एक फोन लटका हुआ था। इस मूछों वाले आदमी ने फोन पीस हुक से निकाला और इस पर मौजूद बहुत से नंबरों में से चंद नंबर प्रेस कर दिए। कौन है, एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। सतोगर बोल रहा हूँ बॉस, आपके मेहमान आए हैं, इस मूछों वाले ने मौतबाना लहजे में कहा। अब पहुंचे हैं, इन्हें स्पेशल रूम में बिठाओ, मैं एक जरूरी कॉल सुनकर अभी वहां पहुंच जाता हूं। दूसरी तरफ से इसी तरह चीखते हुए कहा गया। यस बॉस, इस मूछों वाले ने कहा और इसके साथ ही इसने फोन पीस दोबारा हुक से लटका दिया और फिर इसने साइड दीवार पर एक जगह हाथ रखकर दबाया तो सर सराहट की आवाज के साथ ही दीवार दरमियान से फट कर साइडों में हो गई। अब सामने एक बंद दरवाजा था। इस मूछों वाले ने इस दरवाजे के हैंडल को दबाया तो दरवाजा खुल गया। अंदर एक खासा बड़ा कमरा था जिसमें सोफे आमने सामने मौजूद थे। कमरे को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। आप लोग अंदर बैठें, बॉस अभी यहाँ आ जाएंगे, मूछों वाले ने एक तरफ हटते हुए कहा और तनवीर सर हिलाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे सफदर और कैप्टन शकील भी अंदर दाखिल हुए तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और उसके साथ ही सरद की हल्की सी आवाज सुनाई दी तो वो तीनों समझ गए कि दरवाजे के बाहर की दीवार बराबर हो गई है। लगता है हमें ट्रैप किया जा रहा है, सफदर ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। फिकर मत करो, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा और इसके साथ ही वो तीनों सोफों पर बैठ गए। अलबत्ता इन तीनों की नजरें इस पूरे कमरे का बगौर जायजा ले रही थीं, लेकिन ये आम सा कमरा था। अलबत्ता छत में एक खूबसूरत फानूस लटका हुआ था। सफदर पूरी तवज्जो से इस फानूस को देख रहा था, लेकिन बहरहाल ये आम सा फानूस था। थोड़ी देर बाद कटक की आवाज एक कोने से सुनाई दी और उसके साथ ही वहाँ दरवाजा नमूदार हुआ तो वो तीनों चौंक कर इस दरवाजे की तरफ देखने लगे। इनके अंदाज ऐसे थे जैसे बच्चे किसी शाब्दाबाज को देखते हैं कि वो टोपी में से कबूतर निकालता है या तोता। इसके साथ ही दरवाजा खुला और एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था, चेहरे पर जख्मों के मंदबंद निशानात खासी कसर से मौजूद थे, आंखें छोटी और पेशानी तंग थी, सर के बाल घुंघराले थे। मेरा नाम माइटी है, आने वाले ने सख्त लहजे में कहा और फिर तनवीर के साथ ही सोफे की कुर्सी पर बैठ गया। मेरा नाम मार्शल है और ये मेरे साथी हैं जॉनसन और रॉक्सन, तनवीर ने सख्त लहजे में जवाबी तारुफ कराते हुए कहा। क्योंकि वे तीनों मकामी चेहरों में थे, इन्होंने कोची से रवाना होने से पहले बाकायदा मेकअप कर लिए थे। तुमने जिस निशानेबाजी महारत और दिलेरी का मुजाहरा क्लब हॉल में किया है इससे मैं जाती तौर पर बेहद मुतासिर हुआ हूँ, इसलिए मैंने मुदाखलत करके तुम्हें बुलवाया है, वरना वहाँ ऐसे इंतजामात हैं कि तुम्हारे जिस्मों के परख्चे उड़ चुके होते, मायती ने कहा। ये तुम्हारी खुश फहमी है मायती, अगर तुम सामने ना आते तो अगले लम्हे तुम समेत तुम्हारा पूरा कलप पिंकों की तरह बिखर चुका होता और अब भी तुम्हारे दिल में कोई हसरत है तो तुम वो हसरत निकाल सकते हो। तन्वीर ने मुंह बनाते हुए कहा। इसका चेहरा और लहजा बता रहा था कि वो मायती की बात से जरा भी मुतासिर नहीं हुआ। तुम कौन हो और क्यों मुझसे मिलना चाहते हो? मायती ने अब होंठ चबाते हुए कहा। हमें डार्क फेस के बारे में मालूमात चाहिए और ये भी सुन लो कि हमें मालूम हुआ है कि तुमने डार्क फेस की तरफ से डील की हुई है, इसलिए इनकार करने और लाइल में जाहिर करने का कोई फायदा न होगा। और अगर तुम इस सिलसिले में कोई रकम लेना चाहते हो तो वो रकम भी तुम्हें मिल सकती है। बहरहाल ये सुन लो कि तुम्हें हर हालत में इस बारे में बताना होगा। तन्वीर ने सर लहजे में कहा। ये नॉवेल डार्क फेस का बकिया हिस्सा पार्ट 7 में समाप्त फरमाएं।